ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं शग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकाकन्त राधाकन्त नमस्तुते। तप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विशभानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आज हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के दो महान आचार्यों की तिरुभाव तिथि है, इसलिए इस अवसर पर हम उनके गुणगान करेंगे या गुणगान करने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः भगवान के संबंध में जिस ग्रंथ में विस्तार पूर्वक वर्णन है जिसको हम श्रीमद् भागवतम कहते हैं वो ग्रंथ भागवत है। और श्रीमद् भागवत के सिद्धांत के अनुसार जो भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं वे व्यक्ति भागवत हैं। तो आज श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जिनकी शुभ तिरुभाव तिथि है और उनके साथ साथ श्री गौरीदास पंडित उनकी भी तिरुभाव तिथि है, तो सर्वप्रथम हम श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के पार्षद श्री गौरीदास पंडित के संबंध में चर्चा करेंगे और उसके पश्चात श्री रूप गोस्वामी के संबंध में चर्चा करेंगे। यद्यपि उनके गुण अगाध समुद्र के समान है, अनंत है, जिस प्रकार भगवान अनंत हैं और उनकी कथा अनंत है, उसी प्रकार उनके महान भक्तों की कथा भी अनंत है। इसलिए थोड़े समय में हम पर्याप्त रूप से उनका गुणगान नहीं कर पाएंगे, किंतु जितना संभव हो सके हम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए गौरीदास पंडित ये अंबिका कालना में रहते थे, जो वर्धमान जिले में स्थित है और नवद्वीप के निकटवर्ती है और गंगा के तट पर स्थित है ये अंबिका कालना, और उस गंगा के आर पार शांतिपुर है जहां अद्वैत आचार्य निवास करते थे। तो ये गौरीदास पंडित के पिताजी का नाम था कंसारी मिश्र और माताजी का नाम था कमला देवी। तो ये छह भ्राता थे। तो इनमें से गौरीदास पंडित, छह भ्राताओं में से गौरीदास पंडित और सूर्यदास, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, क्योंकि श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के साथ इनकी जो प्रेमपूर्ण लीलाएं हैं ये अत्यंत आस्वादनीय है। गौरीदास पंडित के ज्येष्ठ भ्राता सूर्यदास सरखेल ये नित्यानंद प्रभु के ससुर थे, अर्थात इनकी दो कन्याएं वसुधा और जाह्नवा, ये दोनों ने नित्यानंद प्रभु के साथ विवाह किया था। और आज भी वो स्थान वहां दृष्टिगत होता है अंबिका कालना में, जहां गौरीदास पंडित का गृह है उसके पास है सूर्यदास सरखेल का निवास स्थान, और जहां पर नित्यानंद प्रभु का विवाह हुआ था वो स्थान भी अभी भी है। तो विशेष रूप से गौरीदास पंडित ये गौर नित्यानंद के प्रमुख भक्त थे। कृष्ण लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कृष्ण बलराम थे, और ये गौरीदास पंडित कृष्ण लीला में द्वादश गोपालों में से एक सुबल सखा जो प्रसिद्ध हैं, ये सुबल सखा थे। तो गौरीदास पंडित अंबिका कालना में रहते थे और आज भी वो स्थान है जहां उनका मंदिर है, और उस मंदिर में गौर नित्यानंद का श्री विग्रह है। तो ये गौर नित्यानंद विग्रहों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं गौरीदास पंडित को प्रदान किया था। तो वहां पर गौर नित्यानंद का श्री विग्रह, जो साक्षात गौर नित्यानंद है, वहां विराजमान है, और वहां पर मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु के हस्तलिखित भगवत गीता भी है, भगवत गीता की पोथी है। आज कोई भी उस स्थान पर जाए तो वो देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के हस्तलिखित भगवत गीता। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार शांतिपुर से गंगा नदी पार करके अंबिका कलना आए थे, तो उस समय नौका में पार करके आए थे, तो नौका को खेने के लिए जो पतवार होता है तो उसी को लाकर उन्होंने दिया था गौरीदास पंडित को। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने गौरीदास पंडित से कहा था कि गौरीदास, ये जो पतवार को तुम रखो और इसके माध्यम से जो संसार सागर है, संसार सागर को पार करने के लिए तुम इसके माध्यम से जीवों की सहायता करो, अर्थात जीवों का उद्धार करो, इस संसार सागर से जीवों का पार करो। तो आज वो उस मंदिर में वो नाव खेने वाला पतवार अभी भी है, वहां जो लोग वहां गए हुए हैं वो देखे होंगे, और जो जाना चाहते हैं अंबिका कालना अवश्य जाना चाहिए, और नवद्वीप के पास है। तो उस पतवार को देख सकते हैं, और गौर नित्यानंद विग्रह वहां पर अत्यंत प्रसिद्ध विग्रह है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के लिए निश्चय किया, तो नित्यानंद प्रभु के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु अंबिका कालना गए थे गौरीदास पंडित से विदा लेने के लिए। तो जब वो गौरीदास पंडित के घर पर पहुंचे और गौरीदास पंडित को कहा कि वो संन्यास लेने जा रहे हैं जगत के कल्याण के लिए, तो गौरीदास पंडित इस बात को सहन नहीं कर सके, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत उनसे मिलना उनके लिए संभव नहीं होगा, इसलिए वो बहुत दुखी हो गए गौरीदास पंडित। तो गौरीदास पंडित को सांत्वना देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने उनके आंगन में संकीर्तन प्रारंभ किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में नाच रहे हैं गौरीदास पंडित के आंगन में, और नित्यानंद प्रभु हरी हरी ध्वनि कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब गौरीदास पंडित ने देखा चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते हुए, तो वो उनके चरणों में गिर पड़े, और चरणों में गिरकर गौरीदास पंडित ने कहा श्री चैतन्य महाप्रभु से कि प्रभु, आपका विरह मुझसे सहा नहीं जाएगा, इसलिए आपके चरणों में मेरा विनम्र निवेदन है कि आप दोनों गौर नित्यानंद मेरे घर पर ही रहे, मेरे गृह को त्याग करके अन्यत्र न जाए। और इस प्रकार कहते हुए गौरीदास पंडित रोने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर, और पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे कि आप दोनों यदि मेरे घर पर रुकेंगे तब मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि आप दोनों पतितपावन हैं। इसका अर्थ है कि आप दोनों मेरे घर पर नहीं रुकेंगे, इसका अर्थ आप पतितपावन नहीं हैं। क्योंकि मैं सबसे अधम पतित जन हूं, तो मेरे उद्धार के लिए आप दोनों को मेरे घर पर रुकना है। तो इस प्रकार विनय करते हुए जब गौरदास पंडित रोने लगे तो उनको सांत्वना देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गौरीदास, हमारे विग्रह की तुम पूजा कर सकते हो, हमारे दोनों के जो विग्रह हैं, मूर्ति हैं, उनको तुम घर पर पूजा कर सकते हो, क्योंकि हमारे विग्रह और हम में कोई अंतर नहीं। फिर भी गौरीदास पंडित का मन माना नहीं। गौरीदास पंडित इससे आश्वस्त नहीं हुए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि स्वयं गौर नित्यानंद का दर्शन करना, उनकी सेवा करना और विग्रह की सेवा करने में अंतर है। तो जब वो इस प्रकार दुखी होकर दीर्घ श्वास छोड़ने लगे तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि गौरीदास पंडित को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, कि मेरे विग्रह और मुझ में कोई अंतर नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने गौरीदास पंडित से कहा कि गौरीदास, तुम इस प्रकार विनम्र भाव को त्याग दो, हम तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हैं, क्योंकि भगवान भक्त के प्रेम से वशीभूत होते हैं, भक्ति वश माधव। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर हम वचन देते हैं कि हम तुम्हारे घर पर रुकेंगे। तो यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत अपने समान, गौर नित्यानंद के समान, दो मूर्ति लाकर वहां पर रख दिए अपने पास गौरीदास पंडित के सामने। तो गौरीदास पंडित आश्चर्यचकित हो गए, वो देख रहे हैं कि गौर नित्यानंद खड़े हैं और उनके साथ साथ ये दोनों मूर्ति भी वहां पर खड़ी है, गौर नित्यानंद की मूर्ति, और इन चारों में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो गौरीदास पंडित आश्चर्यचकित हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गौरीदास, अब तुम हम चारों की सेवा करो, क्योंकि गौरीदास को विश्वास नहीं हो रहा था कि मूर्ति और भगवान में अंतर है, ये दोनों समान नहीं है। इसलिए अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम चारों की तुम सेवा करो। तो गौरीदास पंडित ये चारों की सेवा करने के लिए भोजन बनाने के लिए गए और तरह तरह के व्यंजन प्रस्तुत किए, तरह तरह के व्यंजन प्रस्तुत करके चारों को एक साथ भोग लगाया। तो गौरीदास पंडित देख रहे हैं कि चारों अपने पात्र से लेकर खा रहे हैं उनके सामने, तो गौरीदास पंडित को कोई अंतर प्रतीत नहीं हुआ कि ये कौन मूल गौरनिताई है और कौन मूर्ति है, क्योंकि ये चारों एक समान दिख रहे हैं और चारों खा रहे हैं एक साथ। तो इस प्रकार गौरीदास पंडित बहुत प्रसन्न हो गए। अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गौरीदास, तुम्हें विश्वास देना दिलाने के लिए हम तुमसे मांग कर खाएंगे और तुम चाहे हम चारों में से किसी को रख लो जैसे तुम्हारी इच्छा है। तो गौरीदास ने सोचा कि ठीक है, अब उनको पता नहीं चल रहा ये चारों में कौन मूर्ति है और कौन मूल गौर नेता है, फिर भी उन्होंने गौर नेता को ही रखा। तो देखा है कि जो दूसरे गौर नेता है वो चल दिए, तो वही गौर नेता अभी भी है अंबिका कालना में जो साक्षात विराजमान है। इसलिए वहां के जो पुजारी हैं, जैसे हमारे यहाँ वृंदावन में बांके बिहारी जी हैं, तो अधिक समय के लिए पुजारी आप लोगों को दर्शन करने नहीं देता है बांके बिहारी को, क्योंकि पुजारी को भय है कि भगवान तो भक्त के वशीभूत होते हैं, कोई भक्त ऐसा आकर पहुंच जाएगा भगवान को साथ लेकर चला जाएगा, इसलिए बंद कर देते हैं पर्दा। तो उसी प्रकार अंबिका कालना में भी आप जाएंगे दर्शन करने के लिए तो पुजारी थोड़े समय के लिए दर्शन के लिए देगा, फिर पर्दा बंद कर देता है, तो अधिक समय दर्शन करने नहीं देता है, क्योंकि भय है कि कहीं गौर नेता ही भक्त के साथ चले न जाए। तो वही गौर नेता विग्रह अभी भी हैं। तो गौरीदास पंडित ने प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। तो एक दिन गौरीदास पंडित जब सेवा कर रहे थे गौर नेताई की, तो गौर नेताई दोनों ने कहा गौरीदास पंडित से कि गौरीदास तुम क्या भूल गए हो कि तुम द्वापर युग में हमारे साथ क्रीड़ा कर रहे थे, तुम हमारे सखा थे और हमारे साथ खेल रहे थे यमुना के किनारे। यह कहकर गौर नेता दोनों कृष्ण बलराम रूप हो गए। तो गौरीदास पंडित आश्चर्यचकित हो गए कि गौर नेता अब कृष्ण बलराम हो गए हैं और उसी प्रकार कृष्ण का श्याम वर्ण और माथे में वही पगड़ी, मोर पंख, गला में वनमाला। तो दोनों बलराम जी गौरवर्ण धारण किए हुए हैं और नीलांबर पहने हुए हैं, कृष्ण पीतांबर पहने हुए हैं और उसी प्रकार दोनों वनमाला धारण किए हुए हैं और गोप वेश में हैं और बांसुरी धारण किए हुए हैं। तो यह देखकर गौरीदास पंडित आश्चर्यचकित हो गए। तो कृष्ण बलराम ने कहा कि गौरीदास तुम सुबल सखा हो और तुम्हें याद नहीं है कि हम कितनी बार यमुना के किनारे एक साथ खेल रहे थे, कितनी बार हम लोगों ने यमुना के किनारे वन्य भोजन किया है। तो इस प्रकार कहते हुए जब कृष्ण बलराम ने गौरीदास पंडित को याद दिला दिया तो गौरीदास पंडित सुबल सखा के भाव में आ गए और उसी प्रकार कृष्ण बलराम के साथ वो व्यवहार करने लगे। किंतु बाद में फिर उनका आवेश टूट गया तो वो गए, कृष्ण बलराम फिर अपने गौर नेता रूप में आ गए। तो गौरीदास पंडित गए भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए। तो गौरीदास पंडित जब भोजन बनाने के लिए जाते थे तो प्रतिदिन कई तरह के व्यंजन प्रस्तुत करते थे गौर नेता के लिए। यहाँ तक कि जब वो वृद्ध हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त हुए गौरीदास पंडित, तो वृद्धावस्था में भी वो तरह तरह के व्यंजन प्रस्तुत करने में आनंद प्राप्त करते थे। यद्यपि उनको बहुत परिश्रम होता था, फिर भी वो आनंद प्राप्त करते थे गौर निताई को खिलाने में, क्योंकि गौर निताई मांग मांग करके खाते थे उनसे, ये दो वो दो, ये क्यों नहीं दिया, तो उनको बहुत आनंद आता था खिलाने में। किंतु गौर निताई ने देखा कि अब गौरीदास पंडित वृद्ध हो गए हैं और उनको अब बहुत कष्ट हो रहा है वृद्धावस्था में, तरह तरह के व्यंजन प्रस्तुत करने के लिए परिश्रम करना पड़ रहा है। तो गौर निताई ने कई बार उनको मना किया, वो बात करते थे गौरीदास पंडित से, तो गौर निताई ने मना किया उनको कि तुम इतना व्यंजन प्रस्तुत मत करो, अब तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है और तुम्हारा कष्ट हमसे सहा नहीं जाता है। भगवान कह रहे हैं गौरीदास पंडित से कि तुम वृद्धावस्था में इतना कष्ट कर रहे हो, हमारे लिए हमसे सहा नहीं जाता है। किंतु गौरीदास पंडित नहीं मानते थे गौर निताई की बात, वो फिर भी कष्ट होने पर भी तरह तरह के व्यंजन प्रस्तुत करते थे। तब एक दिन गौरीदास पंडित व्यंजन प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं और जब आकर भोग लगा रहे हैं तो गौर निताई ने उस दिन भोजन नहीं किया, वो रूट गए गौरीदास पंडित के ऊपर, यह हमारी बात नहीं मानता है और तरह तरह का कष्ट करके व्यंजन प्रस्तुत करता है, आज हम नहीं खाएंगे। तो गौर निताई ने ऐसा निश्चय करके वो बैठ गए और खाना उस दिन नहीं खाए। तो गौरीदास पंडित आए और देखा कि सब भोजन की थाली ऐसे ही है, गौर निताई नहीं खा रहे हैं, तो वो समझ गए कि ये मेरे ऊपर क्रोधित है, उठे हुए मैं इनकी बात नहीं सुनता। तो गौरीदास पंडित ने दोनों को कहा कि आप दोनों को अगर नहीं खाना है तो मुझसे इतना क्यों रसोई बनवाते थे, मैं क्यों इतना रसोई बना रहा था, तो अब यदि नहीं खाना है दोनों को, ठीक है कल से मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, केवल कुछ साग बना दूंगा, साग और भात यही इतना खाना है। तो ये कह करके गौरीदास पंडित स्वयं उपवास रहे, उन्होंने भी खाना नहीं खाया। तब गौर निताई ने देखा कि अब भक्त उपवास हैं, अब उनको खाना पड़ेगा, तब फिर वो बोले कि ठीक है हम अब खाते हैं, तुम रूठो मत, फिर खाने लगे। तो इस प्रकार गौर निताई व्यवहार करते थे गौरीदास पंडित के साथ। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि के अवसर पर, आविर्भाव तिथि और 3 दिन बाकी था, तो गौरीदास पंडित किसी शिष्य के घर गए थे कुछ अर्थ संग्रह करने के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि मनाना है, उत्सव करना था, तो वह चले गए थे। अपने शिष्य जिनका नाम हृदय था, बाद में हृदय चैतन्य पड़ा, उन्हीं को गौर निताई की सेवा का भार अर्पित करके गए थे गौरीदास पंडित। किंतु जब चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि निकट हो गई और गौरीदास पंडित नहीं लौटे, तो हृदय चैतन्य को चिंता हुई कि कैसे उत्सव करना होगा, अब गुरु महाराज नहीं है तो अब मैं क्या करूं, गुरु महाराज की अनुपस्थिति में मैं कैसे उत्सव करूं। फिर भी गुरु महाराज का स्मरण करके उन्होंने निमंत्रण पत्र भेजा सब भक्तों के पास, और शिष्य लोग जो थे गौरीदास पंडित के, उनके पास निमंत्रण पत्र भेजा चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि के अवसर पर उत्सव के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि की पूर्व संध्या पर गौरीदास पंडित लौट कर आ गए और आकर उन्होंने सुना कि उनका शिष्य हृदय चैतन्य, उन्होंने गुरु की अनुमति के बिना अपने आप निमंत्रण पत्र भेज दिया है भक्तों के पास और शिष्यों के पास। तो गौरीदास पंडित को ये अच्छा नहीं लगा शिष्य का स्वतंत्र आचरण, क्योंकि शिष्य गुरु की अनुमति के बिना कुछ नहीं करना चाहिए था उसको। तो उन्होंने हृदय चैतन्य से कहा कि तुमने स्वतंत्र आचरण किया है मेरे अनुमति के बिना, तुमने निमंत्रण पत्र भेजा है, अब तुम्हारा स्थान यहाँ पर नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो हृदय चैतन्य गुरु के आदेश से दुखी होकर उनके मंदिर से चले गए और गंगा के तट पर एक वृक्ष के नीचे वहाँ बैठे रहे। और दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि है, तो कुछ भक्त लोग वहाँ आने लगे और किसी ने, कोई धनी व्यक्ति कुछ धन लाकर हृदय चैतन्य को दिया चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि मनाने के लिए। किंतु हृदय चैतन्य ने वो धन नहीं रखा, उसको अपने गुरु महाराज के पास भेज दिया। किंतु गौरीदास पंडित को जब पता चला कि कोई धनी व्यक्ति को हृदय चैतन्य ने भेजा है उनके पास, को धन लेकर आया है चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि उत्सव मनाने के लिए, तो गौरीदास पंडित ने उस व्यक्ति को हृदय चैतन्य के पास भेज दिया, कहा कि तुम जाकर ये धन उसी को दो, वही उत्सव करेगा उधर। तो गौरीदास पंडित अपने मंदिर में उत्सव करने के लिए व्यवस्था कर रहे थे और हृदय चैतन्य जो गंगा नदी के तट पर वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, वहीं पर वो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि का उत्सव, अब उनको धन प्राप्त हुआ था तो उसी के माध्यम से वो मना रहे थे। तो जब हृदय चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि के अवसर पर उत्सव करने लगे और संकीर्तन प्रारंभ करने लगे, तो गौर नेताई जो थे गौरीदास पंडित के मंदिर में, वो चले गए उधर और वहाँ हृदय चैतन्य के उत्सव में वहाँ नृत्य करने लगे। तो गौरीदास पंडित जब मंदिर में गए तो देखते हैं कि गौर नेताई वहाँ नहीं है, क्योंकि जो पुजारी था, वास्तविक पुजारी गया था देखने के लिए, भोग लगाने के लिए, तो पुजारी ने देखा कि गौर नेताई नहीं है। तो उन्होंने आकर गौरीदास पंडित से कहा कि गौर नेताई तो नहीं है मंदिर में। तो गौरीदास पंडित समझ गए कि गौर नेताई कहाँ गए, तो ये मन ही मन हंसने लगे गौरीदास पंडित, और उन्होंने हाथ में एक डंडा लिया और डंडा लेकर हाथ में वो गए वहाँ हृदय चैतन्य के, वहाँ जहाँ उत्सव हो रहा था, क्योंकि गौरीदास पंडित जानते थे कि गौर नेताई और कहाँ जाएंगे, वही गए होंगे। तो जाकर वो देखते हैं कि वहाँ दोनों नाच रहे हैं, दोनों भाई हृदय चैतन्य के उत्सव में। तो वो डंडा लेकर जब उनके पास पहुंचे तो गौर नेताई डर गए क्योंकि ये कृष्ण लीला में सुबल सिखाते तो गौर नेताई डर गए और डर के मारे तुरंत उन्होंने क्या किया, तो उनके शिष्य गौरीदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य, उनका नाम हृदय था, तो उनके हृदय मंदिर में प्रवेश कर गए गौर नेताई तो गौरीदास पंडित ने जब देखा कि गौर नेताई उनके देखते देखते उनके शिष्य के हृदय में प्रवेश कर गए हैं, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने सोचा कि उनका शिष्य हृदय कितना भाग्यशाली है जो भगवान गौर नित्यानंद को अपने हृदय में धारण कर रहा है। तो गौरीदास पंडित ने तुरंत वो डंडा फेंक दिया वहीं पर उन्होंने, और तुरंत जाकर अपने शिष्य हृदय को अपने गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारे जैसे शिष्य प्राप्त होकर मैं भी धन्य हो गया। आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य होगा क्योंकि तुम हृदय में चैतन्य महाप्रभु को धारण कर रहे हो। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु गौरीदास पंडित के साथ लीला कर रहे थे और उनके शिष्य हृदय चैतन्य के साथ भी लीला कर रहे थे, और वही हृदय चैतन्य के शिष्य थे श्यामानंद प्रभु, जिनको राधा रानी का नूपुर मिला था निधिवन में। तो आज इस अवसर पर हम श्री गौर नित्यानंद के महान भक्त श्री गौरीदास पंडित के चरणों में और उनके शिष्य श्री हृदय चैतन्य के चरणों में और उनके शिष्य श्यामानंद प्रभु के चरणों में अपनी विनम्र प्रणति निवेदन करते हुए उनकी कृपा की भिक्षा करते हैं कि उनके हृदय में गौर नित्यानंद के प्रभु प्रति जिस प्रकार प्रेम भाव था, वे कृपा करके हमें भी गौर नित्यानंद के चरणों में ऐसा प्रेम भाव प्रदान करें। जय श्री गौरीदास पंडित की जय। जय श्री हृदय चैतन्य की जय। जय श्री श्यामानंद प्रभु की जय। जय श्री गौर नित्यानंद की जय। तो अब वही गौर नित्यानंद विग्रह अंबिका कलना में है और आप लोगों को यदि कभी अवसर मिले तो आप अवश्य जाइएगा उनका दर्शन करने के लिए, और वहाँ गौर नित्यानंद का प्रसाद भी प्राप्त होता है। यदि आप पहले से व्यवस्था कर सकें तो प्रसाद भी प्राप्त हो सकते हैं। अब हमारे पास बहुत कम समय रह गया है, इसलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद की तिरुभाव तिथि और इसलिए रूप गोस्वामी के संबंध में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं इसलिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जितने भी आचार्य हुए हैं उनके सेनापति स्वरूप है। वृंदावन में जो 6 गोस्वामी थे उनमें प्रमुख हैं श्री रूप और सनातन गोस्वामी। तो श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी के कनिष्ठ भ्राता थे और ये उनके पिताजी के अनेक पुत्र हुए थे कुमारदेव के, किंतु इनमें 3 पुत्र बहुत प्रसिद्ध थे, श्री रूप, सनातन और अनुपम या श्री बल्लभ। ये तीनों भाई थे और तीनों ही श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वृंदावन आए थे। तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार रूप और सनातन ये बहुत बड़े विद्वान थे और श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त होने के लिए सर्वदा व्याकुल रहते थे। यद्यपि ये नवाब हुसैन शाह के दरबार में मंत्री के रूप में कार्य करते थे, क्योंकि हुसैन शाह के जो गुरु थे मौलवी, उन्होंने कहा था उसको कि तुम यदि समृद्ध होना चाहते हो, वैभव को प्राप्त करना चाहते हो, राज्य संपत्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो ये दोनों को तुम मंत्री के रूप में नियोजित करो। तो इसलिए हुसैन शाह ने बलपूर्वक रूप और सनातन को अपने मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। यद्यपि रूप सनातन नहीं चाहते थे कि मुसलमान शासक के मंत्री बनने के लिए, किंतु वह बाध्य थे, अन्यथा हुसैन शाह उनको दंडित कर सकता था। और उनके मंत्रित्व में हुसैन शाह की राज्य संपत्ति और धन वैभव में वृद्धि होने लगी। और इस प्रकार हुसैन शाह ने इन दोनों का नाम भी परिवर्तित कर दिया था। रूप गोस्वामी का नाम दबीर खास और सनातन गोस्वामी का नाम साकर मल्लिक उन्होंने रखा था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में लीला कर रहे थे तो ये रूप सनातन ये दोनों हुसैन शाह के मंत्री थे और रामकेली में निवास करते थे। तो रूप गोस्वामी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एक पत्र भेजा था, क्योंकि रूप सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना चाह रहे थे और उनके चरणों में शरण ग्रहण करना चाह रहे थे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी का पत्र मिला तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने एक पत्र भेजा उनके पास उनको सांत्वना देने के लिए। और उस पत्र में उन्होंने इस प्रकार लिखा था, एक श्लोक उद्धृत किया था, पर व्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मसु तत एव आस्वदेति अंतर नव संगरसायन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था इस श्लोक के माध्यम से, यह संदेश भेजा था कि जिस प्रकार पर व्यसनिनी नारी अर्थात जो स्त्री अपने स्वामी के अतिरिक्त पर पुरुषों में आसक्त है, वह जिस प्रकार हर समय पर पुरुष में पुरुष के साथ मिलने के लिए और उस मिलन के आनंद के संबंध में चिंता करती रहती है और इस बात को कोई न जाने, इसलिए घर के काम में सदा सर्वदा व्यस्त रहती है। तो बाह्य रूप से घर के काम में व्यस्त रहती है किंतु अंतर में पर पुरुष से मिलने की चिंता करती रहती है, उस मिलन रस का आनंद लेती रहती है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से कहा था कि तुम दोनों अंतर में तुम्हारी निष्ठा होनी चाहिए, मुझसे मिलने के लिए, किंतु बाह्य रूप से तुम यद्यपि हुसैन शाह के राजमंत्री हैं तो अपने कार्य में भी तुम लोगों को लगे रहना चाहिए। तो बाह्य रूप से राज कार्य करो और अंतर में सदा सर्वदा मेरे साथ मिलने के लिए उत्कंठा बनाए रखो। उचित समय आने पर तुम्हारे साथ मेरा मिलन होगा। तो इस प्रकार रूप और सनातन दोनों इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो समय आएगा जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया, संन्यास लेने के उपरांत वो नीलाचल में जाकर रहने लगे, तो नीलाचल से जब वृंदावन जाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मनस्थ किया, तो वृंदावन जाने के लिए नीलाचल से वो गौड़देश होते हुए वो निकले। तो नीलाचल से गौड़देश में पहुंचकर वो पहले विद्यानगर में आकर रुके थे, उसके बाद नवद्वीप में कुछ काल निवास किया और वहीं बहुत सारे लोग उनका दर्शन करने आए। तो चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करके भावाविष्ट हो जाते थे, कृष्ण प्रेम में आविष्ट हो जाते थे, उनके भावपूर्ण नृत्य का दर्शन करने के लिए लाखों लोग एकत्रित हो जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ से जब वृंदावन के लिए निकले तो उनके साथ लाखों लोग चल पड़े। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने मनस्थ किया कि वह राम के लिए जाकर रूप सनातन को दर्शन दे। यद्यपि वृंदावन जाने के मार्ग में राम के लिए नहीं आता था, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने मनस्थ किया कि वह राम के लिए इसलिए जाएंगे क्योंकि रूप सनातन को दर्शन देंगे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु राम के लिए में पहुँचे और वहाँ गंगा के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर वह संकीर्तन कर रहे थे और बहुत सारे भक्त लोग उनको घेरे बैठे थे, तो रात्रि में छद्म वेश में ये रूप और सनातन उनके पास आए, क्योंकि वो राजमंत्री थे इसलिए उनको कोई भी पहचान सकता था। और ये संवाद हुसैन शाह के पास पहुंच सकता था। यद्यपि हुसैन शाह चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव को देखकर वो समझ गया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण साधु नहीं है, वो स्वयं ईश्वर है। इसलिए उन्होंने राज्य में घोषणा की थी कि चैतन्य महाप्रभु के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न करे, उनको स्वच्छंद रूप से विचरण करने दे उनके राज्य। तो रूप सनातन फिर भी अपने को गुप्त रखने के लिए वो छद्मवेश धारण किए हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचे। और जब रूप सनातन पहुँचे, वो दांत में तिनके दबाए हुए थे, क्योंकि व्यक्ति उसी समय दांत में तिनका दबाता है जब वो अपने को अत्यंत दीनहीन मानता है। ये विनम्रता का प्रतीक है। वही व्यक्ति दांत में तिनका दबा सकता है जो अपने को अत्यंत दीनहीन पापी पतित समझता है। तो रूप सनातन यद्यपि महान पंडित थे, विद्वान थे, राजमंत्री थे, उनकी सामाजिक स्थिति अत्यंत उच्च पद पर थे, वो धनशाली थे, वित्तशाली थे, फिर भी वो अपने को अत्यंत दीनहीन पतित अधम मानते थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ है, किंतु हमारा दुर्भाग्य एक मुसलमान शासक का हम सेवक बने हुए हैं, और हमारा नाम भी उन्होंने बदल दिया है, दबीर खास और साकर मलिक मुसलमान नाम दिया है, तो इसलिए अपने को बहुत पतित मानते थे और चाहते थे कि इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वो शरण ग्रहण करें। इसलिए दांत में तिनके दबाए जब चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, तो नित्यानंद प्रभु ने पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया और नित्यानंद प्रभु ने परिचय कराया रूप सनातन का चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत उठ करके रूप सनातन को अपने गले में लगा लिया, उनका आलिंगन किया और उनसे कहा कि तुम लोग इतनी विनम्रता प्रकट मत करो, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति तुम्हारे हृदय में प्रेम भाव है, क्योंकि रूप सनातन यद्यपि राज कार्य देखते थे किंतु राम के लिए मैं अपने निवास स्थान पर बहुत सारे ब्राह्मण पंडितों को बुलाकर वो भागवत की चर्चा करते थे और उनके निवास स्थान से अल्प दूरी पर उनका बहुत बड़ा उद्यान था, जहाँ पर जिस उद्यान को देखने से वृंदावन का भ्रम होता था, और उस उद्यान में राधा कुंड श्याम कुंड उन्होंने बना रखा था। तो इस प्रकार ये रूप सनातन वस्तुतः बाह्य रूप से यद्यपि हुसैन शाह की सेवा कर रहे थे, किंतु अंतर में उनकी कृष्ण निष्ठा थी, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भाव था, इसलिए सदा सर्वदा वो राधा कृष्ण की पूजा करते थे और राधा कृष्ण का चिंतन करते थे, और चैतन्य महाप्रभु इस बात को जानते थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद किया कि अति शीघ्र भगवान श्री कृष्ण उनको इस भवबंधन से मुक्त कर देंगे। तब जब भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद को सुना, तो भक्तों ने रूप सनातन से कहा कि तुम लोगों का अब उद्धार हो गया, जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि भवबंधन से तुम्हारी मुक्ति अति शीघ्र होगी, तुम्हारी मुक्ति हो ही गई। और उसके थोड़े दिन पश्चात रूप गोस्वामी ने राज कार्य को त्याग दिया, उनके पास जो धन था कुछ धन वो ब्राह्मण वैष्णवों को दान में दे दिए, कुछ धन अपने परिवार वालों के भरण पोषण के लिए प्रदान किए और कुछ धन भविष्य के लिए उन्होंने रखा। और उसके पश्चात जब उन्होंने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु अब दूसरी बार नीलाचल से वृंदावन गए हुए हैं, तो उन्होंने तुरंत गृह त्याग दिया और वृंदावन के उद्देश्य से निकल पड़े रूप गोस्वामी। उसके पश्चात सनातन गोस्वामी जो अब और राजकार्य करना नहीं चाहते थे, वे जब राजकार्य करने नहीं गए अस्वस्थता का बहाना बनाकर, तो हुसैन शाह ने अपने राज वैद्य को भेजा और देखा कि सनातन गोस्वामी ब्राह्मण के साथ भागवत की चर्चा कर रहे हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक है। तो उन्होंने समझाया सनातन गोस्वामी को कि वे राजकार्य क्यों नहीं करना चाह रहे। तो सनातन गोस्वामी ने जब कहा कि अब उनको राजकार्य करने की इच्छा नहीं है, अब तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शरण ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो हुसैन शाह ने उनको बंदी बना लिया और बंदीशाला में उनको डाल दिया। तब रूप गोस्वामी को जब पता चला कि इस प्रकार सनातन गोस्वामी बंदी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उन्होंने समाचार भेजा उनके पास कि मैंने जो कुछ धन रखा है भविष्य के लिए, आप उसका उपयोग कीजिए और किसी भी तरह बंदीशाला से आप निकल आइए। तो सनातन गोस्वामी ने उस धन का उपयोग करके, जो बंदीशाला का रक्षक था उसको कुछ धन देकर, वो कुछ बहाना बनाकर वो निकल आए और बहुत कष्ट करते हुए वो वृंदावन की ओर चल पड़े। तो जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आकर लौट रहे थे, नीलाचल लौट रहे थे, तो रूप गोस्वामी के साथ प्रयाग में उनकी भेंट हुई। तो प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भक्ति रस के संबंध में उपदेश प्रदान किया था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन तक रूप गोस्वामी को उपदेश प्रदान किया था भक्ति रस के संबंध में, इसलिए रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय में भक्ति रस के आचार्य हैं, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की मनोभीष्ट को इस संसार में स्थापित किया है। चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को जानते थे रूप गोस्वामी। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतलय, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय की बात को रूप गोस्वामी समझ जाते थे, क्योंकि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के रथ के सामने नृत्य कर रहे थे, तो उस समय उनके मन में एक भाव आया था। जिस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर जब कुरुक्षेत्र आए हुए थे, तो उस समय भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए ब्रजवासीगण कुरुक्षेत्र गए हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके और वहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य का दर्शन करके राधारानी के मन में जो भाव आया था, तो उसी भाव को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधारानी ने जो श्लोक गाया था उसी श्लोक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने गाया था। यह कौमार हर सएव हिवर स्थायव चैत्रक्षप स्तेजो स्नेनो मिलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नील। तो राधारानी ने उस समय कहा था कि अब वही कृष्ण जिन्होंने युवावस्था में मेरे यौवन को हरण किया था, जा कौमार रसाय वैवर, तो वही कृष्ण अब विद्यमान है, वही मधुमास है, बसंत ऋतु है, और कृष्ण वही नायक है, मैं वही नायिका हूं, किंतु मेरा मन अब इस कुरुक्षेत्र में नहीं लग रहा है। मेरा मन तो रेवा नदी के तट पर बेतसी कुंज में विहार करने के लिए उत्कंठित हो रहा है। तो इस प्रकार जब राधारानी के मन में जो भाव उदित हुआ था, तो वही भाव चैतन्य महाप्रभु के मन में उदित हुआ था। श्री चैतन्य महाप्रभु राधारानी के भाव में इस श्लोक का गान किया था और रूप गोस्वामी ने सुना, और किसी को पता नहीं चला कि चैतन्य महाप्रभु ये क्या गा रहे हैं, उनके मन में क्या भाव का उदय हुआ। किंतु रूप गोस्वामी समझ गए थे चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या भाव उदय हुआ, तो उसके अनुरूप रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा था। जब वो हरिदास ठाकुर के साथ रहते थे नीलाचल में रूप गोस्वामी, तो उन्होंने एक श्लोक इसके अनुरूप श्लोक लिख कर, तो हरिदास ठाकुर की कुटिया में उन्होंने कहीं खोस दिया था उस श्लोक को लिख कर ताड़पत्र में। और चैतन्य महाप्रभु जब एक बार आए थे हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए, तो उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर की कुटिया में ये ताड़पत्र का कुछ रखा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु ने ले लिया और उसको जब पढ़ा वो आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने पूछा हरिदास ठाकुर से, इसको किसने लिखा है? तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि रूप गोस्वामी ने लिखा है इसको। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रूप मेरे हृदय के भाव को कैसे समझ गया? इस भाव को कोई नहीं समझ सकता था, ये रूप को कैसे पता चला मेरे हृदय में कैसा भाव आया था? तो इस प्रकार रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के भाव को समझते थे और चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा थी रूप गोस्वामी के ऊपर। और उसके पश्चात वही प्रयाग में रूप गोस्वामी ने शिक्षा ग्रहण की चैतन्य महाप्रभु से भक्ति रस तत्व के ऊपर, और चैतन्य महाप्रभु का सान्निध्य प्राप्त किया। उसके पश्चात वो चले गए वृंदावन चैतन्य महाप्रभु के आदेश से, वो वृंदावन चले आए। जब चैतन्य महाप्रभु बनारस गए तो उस समय सनातन गोस्वामी वहाँ पहुँच चुके थे। तो बनारस में 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भक्ति के सिद्धांत के संबंध में शिक्षा प्रदान की। और जब रूप गोस्वामी वृंदावन आए, उसके पश्चात सनातन गोस्वामी 2 महीने के बाद वृंदावन आ रहे थे, तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए फिर इधर से निकल गए वृंदावन से। उनके साथ उनके छोटे भाई अनुपम थे। तो जब वो निकल गए, किंतु सनातन गोस्वामी वृंदावन आ रहे हैं और रूप गोस्वामी और अनुपम वृंदावन से जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, तो रास्ते में ये अलग अलग रास्ते में आ जा रहे थे। सनातन गोस्वामी राजपथ पर आ रहे थे और रूप गोस्वामी गंगा के तट पर होकर जा रहे थे, इसलिए उन दोनों की भेंट नहीं हुई। तो बाद में जब गंगा के तट पर पहुंचे गौड़ देश में, अनुपम का देहांत हो गया, तो रूप गोस्वामी वहां से पुनः नीलाचल में गए और वहां कुछ दिन रुककर चैतन्य महाप्रभु का सान्निध्य और उनकी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। उसके पश्चात वह पुनः वृंदावन आए और जब वो वृंदावन आए सनातन गोस्वामी नीलाचल के लिए निकल चुके थे, इसलिए उनकी भेंट नहीं हुई। और सनातन गोस्वामी भी कुछ दिन तक नीलाचल में रुके। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था गोस्वामियों को कि वृंदावन में रुककर वो भक्ति शास्त्र का प्रणयन करें, लुप्त तीर्थों का उद्धार करें और भगवान के विग्रहों को प्रकट करें, क्योंकि वृंदावन में भगवान कृष्ण के पोते द्वारा स्थापित, वज्रनाभ के द्वारा स्थापित कई श्री विग्रह लुप्त हो चुके थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आदेश था विशेष रूप से रूप सनातन को विग्रहों को उद्धार करने के लिए। तो रूप गोस्वामी जब वृंदावन में रह रहे थे तो उस समय वो बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का एक आदेश वो पूर्ण नहीं कर सके थे। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अलग अलग स्थानों पर रहते थे और अपना भजन करते थे। तो एक दिन रूप गोस्वामी केसी घाट के पास एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए और बहुत दुखी होकर बैठे हुए हैं। तो उस समय देखते हैं कि गोप कुमार, गोप बालक उनके पास आकर पहुंचा। तो गोप बालक आकर कहता है कि बाबा तुम क्यों दुखी हो, इधर क्यों बैठे हुए दुखी होकर। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि भगवान के लुप्त विग्रहों का उद्धार करने के लिए, और अभी तक हम उस कार्य को करने में समर्थ नहीं हुए, इसलिए हम दुख का अनुभव कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश हमने अभी तक पालन नहीं किया। तो गोप कुमार ने कहा, गोप बालक ने, कि ठीक है तुम मेरे साथ आओ। तो रूप गोस्वामी ने पूछा कि तुम्हारे साथ जाकर हम क्या करेंगे। तो उस गोप बालक ने कहा कि तुम जिसके लिए दुखी हो उस समस्या का समाधान हम बता रहे हैं, तुम मेरे साथ आओ। तो वो गोप बालक के साथ गए रूप गोस्वामी। तो गोप बालक जाकर वो जो गोमर टीला है, जो रंगनाथ मंदिर के सामने जहाँ गोविंद जी का मंदिर अभी है, तो वहाँ पहले एक टीला थी मिट्टी की। तो इस गोप बालक ने दिखा दिया उस टीला को, कहा कि देखो ये जो टीला देख रहे हो, इस टीला में प्रतिदिन एक गाय आती है और इस टीला में आकर ये गाय दूध देती है, और दूध देकर फिर वो गाय चली जाती है। और तुम्हारा यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम कल यहाँ पर खड़े रहकर देखना इस दृश्य को। तो रूप गोस्वामी जब उस टीला की ओर देख रहे थे और सोच रहे थे कि वो टीला कैसी है, फिर पीछे मुड़कर देखते हैं कि वो गोप बालक नहीं है, वो गोप बालक अंतर्ध्यान हो गया। तो रूप गोस्वामी को आश्चर्य हुआ कि ये गोप बालक कौन था जो तुरंत ध्यान हो गया। तो रूप गोस्वामी आश्चर्यचकित होकर फिर दूसरे दिन उस स्थान पर आए देखने के लिए कि गोप बालक ने कहा था कि गाय आकर दूध देती है वहाँ। तो सचमुच रूप गोस्वामी ने देखा, थोड़ी देर बाद एक गाय वहाँ आई और आकर वहाँ दूध देने लगी उस टीला के ऊपर, और दूध देकर फिर वो गाय भी कहीं चली गई। तो उस दिन रूप गोस्वामी ये देखकर आश्चर्यचकित हुए और रात में वो सोए हुए हैं। तो रात में उन्होंने स्वप्न में देखा कि गोविंद देव आकर कह रहे हैं रूप गोस्वामी को कि रूप मैं बहुत दिन से इस टीला के नीचे पड़ा हुआ, ये सुरभि गाय आकर यहाँ पर दूध देती है किंतु मैं बहुत दिन से इसके नीचे पड़ा हुआ हूँ, तुम मेरा उद्धार करो यहाँ से। तो दूसरे दिन रूप गोस्वामी आसपास के गांव में जो गोपगण थे उनको बताया अपने स्वप्न के बारे में और गोपों को साथ लेकर उस स्थान पर गए। और जब उस स्थान को उन्होंने उसकी खुदाई की, थोड़ी खुदाई करने के बाद बहुत सुंदर दिव्य गोविंद देव की मूर्ति प्रकट हो गई। जय श्री गोविंद देव भगवान की। तो अति सुंदर विग्रह को देखकर रूप गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए और चारों ओर ये संवाद परिव्याप्त हो गया ब्रज में कि गोविंद देव अब ब्रज में प्रकट हो गए। तो सभी लोग देखने आए गोविंद देव के विग्रह। और जब चैतन्य महाप्रभु को ये समाचार जगन्नाथपुरी में मिला तो चैतन्य महाप्रभु ने काशीश्वर पंडित को यहाँ भेज दिया गोविंद जी की सेवा के लिए। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी ने गोविंद जी का विग्रह प्रकट किया था, सनातन गोस्वामी ने मदन गोपाल विग्रह, मदन मोहन विग्रह को प्रकट किया था, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन विग्रह को प्रकट किया था, मधु पंडित ने गोपीनाथ विग्रह को प्रकट किया था। तो इस प्रकार कई गोस्वामियों ने कई विग्रहों को प्रकट किया था यहाँ ब्रज में। तो वही रूप गोस्वामी बहुत सारे भक्ति रस के शास्त्रों की उन्होंने रचना की। तो जब रूप गोस्वामी जा रहे थे वृंदावन से नीलाचल, उस समय उन्होंने एक नाटक की रचना की थी। तो एक नाटक रचना कर रहे थे, नाटक की समाप्ति नहीं हुई थी, वो कृष्ण लीला का नाटक था, भगवान कृष्ण की ब्रज लीला और द्वारका लीला का वो नाटक था। तो रूप गोस्वामी भगवान कृष्ण की ब्रज लीला और द्वारका लीला को मिला करके वो नाटक लिख रहे थे, विदग्ध माधव नाटक के रूप में। तो जब वो ओडिशा पहुंचे रूप गोस्वामी, वो भुवनेश्वर के पास एक गांव है जिसको सत्यभामापुर कहते हैं। वो गांव अभी भी है जहाँ पर सत्यभामा की मूर्ति है, अकेली सत्यभामा की मूर्ति है, वहाँ एक छोटा सा मंदिर है और अकेली सत्यभामा की मूर्ति है। तो रूप गोस्वामी उस गांव में रुके हुए थे रात में। तो रात में उन्होंने स्वप्न देखा, सत्यभामा देवी आकर कह रही है रूप गोस्वामी से कि तुम जो नाटक की रचना कर रहे हो तो उसमें तुम ब्रज लीला और द्वारका लीला को एक साथ मिलाकर नाटक रचना करने की सोच रहे हो, किंतु मेरी लीला को तुम अलग से लिखो। तो इस प्रकार सत्यभामा का जब आदेश हुआ तो रूप गोस्वामी ने सोचा कि अब नाटक को दो भागों में विभाजित करना है। और जब वो पूरी गए तो पुरी में चैतन्य महाप्रभु ने सुना रूप गोस्वामी ये नाटक लिख रहे हैं, उन्होंने भी रूप गोस्वामी से कहा कि इस नाटक को अलग अलग करना, ब्रज लीला और द्वारका लीला को। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव नाटक की रचना उन्होंने की, जिस नाटक में भगवान कृष्ण की ब्रज लीला का वर्णन है, और ललित माधव नाटक में भगवान कृष्ण की द्वारका लीला का वर्णन। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी ने और कई शास्त्रों की रचना की है जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके साथ साथ उज्जल नीलमणि, ये भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और रूप गोस्वामी ने और भी लघु भागवतामृत और भी कई शास्त्रों की रचना की है। लघु भागवतामृत इस प्रकार कई शास्त्रों की रचना रूप गोस्वामी ने की है। और इस प्रकार ये रूप गोस्वामी ब्रज लीला में रूप मंजरी थे, जो भगवान की लीलाओं को देखते थे और ये अपने शास्त्रों में उसको लिपिबद्ध करते थे। और हम लोग जानते हैं और एक लीला जहाँ रूप गोस्वामी चाहते थे सनातन गोस्वामी को खीर खिलाने के लिए और स्वयं राधा रानी एक गोप बालिका के रूप में आकर दूध चावल चीनी घी ये सब लाकर उन्होंने दिया था और स्वयं राधा रानी ने वो खीर भी बनाया था। तो जब सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने दिया था तो वो खीर अमृत के समान उसका स्वाद था। तो सनातन गोस्वामी ने पूछा रूप गोस्वामी को कि ये खीर कहाँ से लाए रूप। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि एक ब्रज की बालिका ये सब लेकर आई थी और उसने स्वयं अपने हाथ से भी बनाया इसको। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये कोई ब्रज बालिका दूसरी कोई नहीं है, स्वयं राधा रानी है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा था रूप गोस्वामी से कि हम लोग राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए ब्रज में आए हुए हैं, न कि राधा कृष्ण से सेवा लेने के लिए। इसलिए तुम्हारे मन में जो संकल्प जो इच्छा उत्पन्न हुई मुझे खीर खिलाने के लिए, इस प्रकार की इच्छा नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं राधा रानी को कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी ब्रज में निवास करते थे और राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करते थे, राधा कृष्ण का दर्शन करते थे और ग्रंथ में लिपिबद्ध करते जाते थे। इसलिए गोस्वामी ग्रंथ जो है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये सब राधा कृष्ण के पार्षद थे और राधा कृष्ण की लीला को अच्छी तरह जानते थे और हम लोगों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए इसको लिपिबद्ध करते थे। इसलिए हम लोग इन गोस्वामियों के चरणों में हम चिर ऋणी रहेंगे। इन्होंने जो पवित्र दिव्य ग्रंथ प्रदान किए हैं वो नित्य शाश्वत ग्रंथ हैं। इसलिए आज के दिन रूप गोस्वामी के चरणों में और षड गोस्वामियों के चरणों में अपनी विनम्र प्रणति निवेदन करते हुए हम यही आशीर्वाद की भिक्षा करते हैं कि श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद हमें कब वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे जिससे कि राधा कृष्ण के चरणों में हमारा नित्य प्रेम उत्पन्न हो और राधा कृष्ण की सेवा में हम नित्य संलग्न रहें। जय श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री राधा श्याम सुंदर लतासक देवी की जय। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जाए।